आगे सूरत कसस है, इसको एक स्टोरी के तौर पे पढ़िए। लोग आज फिक्शन सुनते हैं, फिल्में, ड्रामे, स्टेज ड्रामे, ये है वो है, उस ऐसे बड़ी नसीहतें मिलती। आप इसको अगर बिल्कुल खाली दिल के साथ सुनेंगे ना, मज़े के साथ, आपको अपनी लाइफ टाइम बहुत खूबसूरत हिंट्स मिलेंगे। 88 आयात हैं, कसस यानी स्टोरीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तौसीम, हरुफ मुकत्तात, तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। ये आयतें हैं रोशन किताब की। हम आपके सामने मूसा और फिरौन का सही वाकया बयान करते हैं, इन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। यकीनन फिरौन ने ज़मीन में सरकशी कर रखी थी और वहाँ के लोगों को गिरोह गिरोह बना रखा था, और इनमें से एक फिरके को कमज़ोर कर रखा था, और इनके लड़कों को तो ज़िबा कर डालता था और इनकी लड़कियों को छोड़ देता था। बेशक वो था ही मुफसिदों में से। फिर हमारी चाहत हुई कि हम इन पर करम फरमाएं जिन्हें ज़मीन में बेहद कमज़ोर कर दिया गया था। अल्लाह आज के मुसलमानों के लिए भी ये फैसला कर ले। याद रखे, बनी इसराइल उस वक़्त के मुसलमान थे लेकिन फिरौन के जंगल में थे। मोनोपोली थी, फिरौन डिक्टेटर था, सुपर पावर समझकर मुसलमानों को दबाता था। अल्लाह कहते, मैंने जब इरादा किया तो मैंने असबाब भी पैदा कर दिए। आइए इस सदी के लिए दुआ करें, अल्लाह पूरी ज़मीन पे मुसलमानों पे जहाँ ऑपरेशन है, जहाँ जुल्म है, बर्बरियत है, अब तो उनको उनसे निकालने के लिए किसी मसीहा को भेज दें। कोई ऐसा वर्ल्ड लीडर मिल जाए कि जो मुसलमानों के हकूक के ऊपर बात कर सके, और हम इन्हीं को पेशवा और ज़मीन का वारिस बनाएं। और ये भी है कि हम इन्हें ज़मीन में कुदरत और इख्तियार दें, और फिरौन और हामान और इनके लश्करों को वो दिखाएं जिससे वो डर रहे थे, कि जब बहुत जुल्म बढ़ जाता है ना तो फिर हालात पलट जाते हैं। फिरौन ने बनी इसराइल पे बहुत जुल्म किए। अब अप्स एंड डाउन, ये है व्हील ऑफ लाइफ जो आपको शुरू में दिया है। व्हील ऑफ लाइफ क्या है? कभी आप ऊपर, कभी आप नीचे, सी सॉ, कभी ऊपर नीचे का खेल है ना। तिल कल या मनुदा बिलुहा बैनन नास, ये दुनिया के दिन है जो हम आपके बीच में घुमाते फिराते हैं। तो अगर आज कोई जाबिर है ना तो फिक्र ना करे, कल वो कुछ भी नहीं होगा। कितनी बड़ी बड़ी ताकतें खत्म नहीं हो गई, आपने अपनी आंखों से रूस के टुकड़े होते नहीं देखे? कैसे अफगानिस्तान और रूस की जंग का इंजाम हुआ, कैसे वहां से अमेरिका को अपनी फौजों को बुलाना पड़ा? तो अल्लाह ताला के हाथ में कौमों को उछालना, जैसे छोटे से गेंद को लेकर के उछालता है ना, अल्लाह के लिए पूरी पूरी नेशंस और उम्मतों को उछालना इससे भी ज्यादा आसान है। अल्लाह के लिए तो कोई मिसाल भी नहीं है। तो फिरौन के चुंगल से निकालते हुए अल्लाह कह रहे हैं कि जिसका डर था वही होगा। ये भी एक बात लिख ले, माँ कानू यखसरून, होता वही है जिसका डर है। जिस बच्चे से फिरौन डर रहा था ना, अल्लाह ने उस बच्चे को फिरौन के घर में ही पलवाया। हजरत याकूब को खौफ था ना कि भेड़िया ना खा जाए यूसुफ को, तो बच्चों ने वही बात बना ली। तो हमेशा अल्लाह से कहा करें कि खैर की बात मेरे दिल में डाल और फिर वही हो। अब यहाँ से मूसा की जिंदगी, लाइफ हिस्ट्री ऑफ मूसा। आने से पहले ही दुश्मनियाँ पड़ी हुई हैं, फिरौन बच्चे मरवा रहा है कि जो बच्चा आएगा ऐसा बनी इसराइल का जिसने कल मेरा ही तख्ता उलटना है तो मैं उसको ख़त्म कराऊं, ऑर्डर जारी कर दिया। नहीं, मुसलमानों के घर में बच्चा पैदा होगा उसको मार देंगे, लेकिन जिसे अल्लाह रखे इसे कौन चखे। वली कैफियत, वही नीला उम्मी मूसा नर्दी, हमने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को वही की कि इसे दूध पिलाती रहे, और जब तुझे इसकी नस्बत को खौफ मालूम हो तो इसे दरिया में बहा देना, और कोई डर खौफ या रंज न करना, हम यकीनन इसे तेरी तरफ लौटाने वाले हैं और इसे अपने पैगंबरों में बनाने वाले हैं। ज़रा सा एक माँ के जज्बात को समझिए। ये पारे के अंदर जो आपका लाइफ साइकिल है ना, इसमें एक बिग पोर्शन हमारे इमोशंस का होता है, जज्बात। इसको आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, जो बड़ी कम होती है लोगों में। स्पार्ट चेयर है, एक औरत के लिए सबसे कीमती मता बच्चा होता है, और बच्चों में सबसे प्यारा न्यूबॉर्न बेबी होता है। आपने जिस्म में तकलीफ को माँ भूलकर बच्चे को पालती है। अल्लाह ने इस औरत की आजमाइश की। ज़रा सा मूसा की माँ के जज्बात को महसूस करें कि जब उसको ये पता चल गया कि ये बच्चा दुश्मनों की नजरों में है, दूध तो पिला, और खौफ होगा जब कभी दुश्मन के आने का तो इसको दरिया में डाल देना, तो माँ का जवाब क्या आया होगा? नहीं नहीं मैं नहीं डालूंगी दरिया में, हाय मेरा बच्चा डूब जाएगा। अल्लाह ने कहा गम ना कर। आज हम अपने बच्चे को बेबी सिटिंग में नहीं डालते, नहीं 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 वहां कुछ हो जाएगा, मेरे साथ बैठेगा। अल्लाह सुबहान तआला के वादों पर यकीन कीजिए, ये उम्मे मूसा से सीखी है। आपकी कीमती तरीन चीज़ भी दीन के रास्ते में अगर खतरे में आती है, कोई बात नहीं, हम बच्चों का नाम ले लेके, शोहरों का नाम ले लेके, ससुरालों का नाम ले लेकर कितनी नेकियों के मौके जाया कर देते हैं, कल रिग्रेट होगा। फिर दूसरी बात है कि खुशखबरियां क्या मिल रही हैं मुझे यहाँ, बिल्कुल हज़रत याकूब एक बाप के रूप में याद आ रहे हैं और इधर माँ के रूप में उम्मे मूसा। याकूब अलैहिस्सलाम को यकीन था कि मेरे बेटे को जो ख्वाब अल्लाह ने दिखाया है वो इसको ज़रूर नबूवत के मनसब पे फ़ाइज़ करेगा और ये ज़िंदा रहेगा। और नबूवत चूँकि 40 साल की उम्र में मिलती है तो उनको पता था कि ये बच्चा फौत नहीं होगा जब तक जवान ना हो जाए। इधर उम्मे मूसा के ऊपर बात कीजिए, कहा जा रहा है कि इसको दरिया में डाल देना और साथ ही कहा जा रहा है कि हम इसको जब लौटाएंगे ना तो ये पैगंबर बन के वापस आएगा। क्या बात है। हजरत याकूब के साथ भी ऐसे ही हुआ, बेटा अगवा हुआ, वो कुआं था इधर दरिया है। अंबिया कराम की स्टोरीज की मुमासलतों को भी नोट किया करें, और उधर भी पैगंबरी इधर भी पैगंबरी। अब क्या हुआ, फलतका हु आलू फिरौन, हजरत यूसुफ को उठाया था तो उस वक्त क्या लफ्ज आया था, यही लफ्ज आया था। उधर अजीज मिस्र ने उठा लिया, इधर क्या हुआ, आखिर फिरौन के लोगों ने इस बच्चे को उठा लिया कि आखिरकार यही बच्चा इनका दुश्मन हो और इनके रंज का बायस बना। देखिए यहाँ वो बच्चा फिरौन के घर आया तो कल फिरौन के लिए फितने और आजमाइश का जरिया बना, उधर यूसुफ अजीज मिस्र के घर में आए तो उसी की बीवी के फितने का जरिया बना, यानी वो हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। कुछ शक नहीं कि फिरौन और हामान और इनके लश्कर थे ही खताकार, और फिरौन की बीवी ने कहा ये तो मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है। इधर फिरौन की बीवी ये कह रही है और उधर याद कीजिए अजीज मिस्र की बीवी क्या कह रही थी, इसे कत्ल ना करो, वो क्या कह रही थी ऑपोजिट इससे, बहुत मुमकिन है ये हमें कोई फायदा पहुंचाए या हम इसे अपना बेटा बना ले, ये लोग शौर ही नहीं रखते थे। यहाँ लिखिए ऑप्टिमिज्म, जिंदगी में रोशन ख्याल रहिए, पुरउम्मीद रहिए, हम उम्मीद से हैं। जब आप अच्छा सोचेंगे ना आपके साथ अच्छा होगा। उलमा कहते हैं कि चूंकि हजरत आसिया जो कि फिरौन की बेगम थी उन्होंने ये कहा कि नहीं नहीं ये बच्चा हमारे हक में बहुत अच्छा होगा, तो देख लीजिए अच्छा हुआ, आंखों की ठंडक होगा तो बना। फिरौन ने ऐसा कुछ नहीं कहा तो उसको नहीं खैर मिली, तो बीबी आसिया इसी बच्चे की वजह से कल मुसलमान होंगी, फिरौन नहीं होगा, चूंकि अच्छा सोचा था अल्लाह ने उनके साथ अच्छा ही कर दिया। बस बहफुआदु उम्मी मूसा फारिगा, मूसा अलैहि सलाम की वालदा का दिल बेकरार हो गया। एक माँ होने के नाते फील करें, इनका दतला तुब दी भी ही, करीब थी कि इस वाक्य को बिल्कुल जाहिर कर देती, यानी बात मुंह पे आ रही थी बार बार, अगर हम इनके दिल को ढारस न दे देते, रबत रबत न ला कलबे। ये बात मांगी अल्लाह से, आपके बच्चे बीमार हैं अल्लाह से रब्त मांगिए, आपके बच्चे परेशान हैं अल्लाह से रब्त मांगिए, आपके बच्चे नहीं है रब्ते कल्ब मांगिए। इस पे हमने एक पारे का पूरा थीम लिया था, इतनी बड़ी दौलत है इरबात, पता है आपको क्या होता है, चलिए थोड़ा सा पारे को सोचें, व्हील ऑफ लाइफ, अप्स एंड डाउन्स, ऊंच नीच चलेगी, कभी अरूज कभी जवाल, इसमें अगर आपका दिल मुतमईन रहे, खुशी में उछल नहीं पड़ रहे और गम में बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं गए, तो आप ईमान वाले हैं। खुद को चेक करें, छोटी सी बात पे हाइपर होके कपड़े ही कम कर देने, जी खुशी का मौका आ गया इसलिए कपड़े उतार दो, और गम में पड़ गए तो अब अंग्स हो गया और एंग्जाइटी हो गई और परेशान हो गए और हंस नहीं रहे बोल नहीं रहे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ये भी नहीं। मोमिन हमेशा बीच में रहता है, आज बल अमरुल मोमिन, मोमिन का मामला बड़ा अजीब है, खुशी मिले तो शुक्र किया जन्नत मिल गई, तकलीफ आई सबर किया जन्नत मिल गई, एक दरवाजा जन्नत में जाने का सबर के नाम का और एक शुक्र के नाम का है। आप और मैं देख लें कि खुशियों में हम क्या करते हैं और गमों में क्या करते हैं, अल्लाह कैसे दिलों को थाम लेता है। और फिर क्या हुआ, मूसा की वालदा ने उसकी बहन से कहा कि तू इसके पीछे पीछे जा, तू इसे दूर ही दूर से देखती रहे और फिरौनियों को इसका इल्म ना हो। यहाँ से एक बहन का किरदार, आप इस बारे में अभी से नोट कीजिए, मूसा अलैहि सलाम की जिंदगी में आने वाली चार औरतों का जिक्र पढ़ेंगे, माँ का, बहन का, बीवी का और बीवी आसिया का। कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमेन, तो इन अप्स एंड डाउन्स को देखिए कि अंबिया कराम को भी मुख्तलिफ तरीके से आजमाया गया और वो इन सारी आजमाइशों में किस तरीके से पूरे उतरे। और मैं हजरत मूसा की माँ का पढ़ते सुनते हुए हमेशा इमोशनल हो जाती हूँ, ऐसी कुर्बानी भी अल्लाह ने कभी किसी से कमी ली होगी, तो तो मूसा की जिंदगी में आने वाली चार औरतों में से दूसरी उनकी बहन। बहनें भाइयों से बहुत प्यार करती हैं, फितरतन बाय डिफॉल्ट। बहन तो भाई से प्यार करती है, भाई भी करते हैं मगर इजहार कम करते हैं। बहनें प्यार भी करती हैं और इजहार भी करती हैं। अल्लाह सारे भाइयों को भी सलामत रखे और अल्लाह सारी बहनों को भी सलामत रखे। चलिए, वहर्रमना अलैहि अल-मरअ मिन क़ब्ल। जब यूसुफ का किस्सा था तो सारी स्टोरी सुना के एकदम फिर कहानी का रुख पलटता है और बताया जा रहा है कि यूसुफ कुएं में से निकाले गए। इधर क्या हो रहा है, मूसा पानी में से निकाले गए। ये लफ्ज मूसा भी इसी से ही है, पानी से निकला हुआ वही लफ्ज है। और इनके पहुंचने से पहले हमने मूसा अलैहिस्सलाम पर दाइयों का दूध हराम कर दिया था। ये कहने लगी कि मैं तुम्हें ऐसा घराना बताऊं जो इस बच्चे की तुम्हारे लिए परवरिश करे और हों भी इस बच्चे के खैर ख्वाह। बस हमने इसकी माँ की तरफ वापस पहुँचाया ताकि इसकी आंखें ठंडी रहें और अजुर्दा खातर ना हो और जान ले कि अल्लाह तआला का वादा सच्चा है। वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून, इसको लिख लें। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते, क्या नहीं जानते कि फाइन्ना माल उसरी यूसरा, हर तकलीफ के बाद खुशी मिलती है, बीमारी के बाद सेहत है। जिंदगी के इस पहिए के अंदर कभी अगर आप आजमाइशों और तकलीफों में आ गए, डोंट वरी, एक दिन खैर आएगी। यहाँ पे आयत 13 पे रुबू हुआ, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह अला नेमतिल कुरआन। अब मूसा का बचपन खत्म हो गया, मूसा फिरौन के घर में बसा दिए गए। उसी फिरौन के घर में अल्लाह ने रखा जिसने मूसा को कत्ल करने के लिए कितने बच्चे मरवा दिए। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अब जवानी का एक वाक़या, वलम्मा बलगा शुद्दहु वस्तवा। और जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जवानी को पहुंच गए और पूरे तवाना हो गए, हमने इन्हें हिकमत और इल्म अता फरमाया। नेकी करने वालों को हम इसी तरह बदला दिया करते हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे वक्त शहर में आए जबकि शहर के लोग गफलत में थे, यहाँ दो शख्सों को लड़ते हुए पाया। एक तो इसके रफीकों में से था और दूसरा इसके दुश्मनों में से। इसकी कौम वाले ने इसके खिलाफ जो इसके दुश्मनों में से था इससे फरियाद की, जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके मुक्का मारा जिससे वो मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, ये तो शैतानी काम है, यकीनन शैतान दुश्मन और खुले तौर पर बहकाने वाला। यानी यहाँ से मूसा का कद काठ और उनकी ताकत जरा अंदाजा करे, इसी को कहते हैं ज़रबे कलीम। मूसा के एक मुक्के से एक बंदा मारा गया। रिवायात से एक वाक़या मिलता है कि मलकुल मौत के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ था। तो मूसा स्ट्रॉन्ग थे, इससे पता चलता है कि दीन के काम करने के लिए स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी चाहिए होती है। खैर आगे क्या हुआ, काला रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िर ली। फिर दुआ करने लगे कि परवरदिगार मैंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया, तो मुझे माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला ने इसे बख्श दिया, वो बख्शिश और बड़ी मेहरबानी करने वाला। कहने लगे, मेरे रब जैसे तूने मुझ पर करम फरमाया, मैं भी अब हरगिज किसी गुनाहगार का मददगार ना बनूंगा। सुबह ही सुबह डरते अंदेशे की हालत में खबरें लेने शहर में आ गए कि अचानक वही शख्स जिसने कल इनसे मदद तलब की थी इनसे फरियाद कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, इसमें शक नहीं कि तू तो सरीख बेराह है, यानी तेरा तो काम ही रोज लड़ना, कल भी तू लड़ रहा था और आज भी लड़ रहा है। लेकिन यहाँ से ये देखिए कि मूसा के दिल में दूसरों की खिदमत का जज्बा बहुत था और ये भी एक मोमिन होने की अलामत है। फिर जब अपने और इसके दुश्मन को पकड़ना चाहा, वो फरियादी कहने लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम, क्या जिस तरह तूने कल एक शख्स को कत्ल किया है मुझे भी मार डालना चाहता है? तू तो मुल्क में जालिम और सरकश होना चाहता है और तेरा इरादा ही नहीं मिलाप करने वालों में से हो। शहर के परले किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, है मूसा, यहाँ के सरदार तेरे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, बस तू जल्द चला जा, मुझे अपना खैर ख्वाह मान। क्या पता चला कि अल्लाह दुश्मनों के घर से ही आपके मुआविन भेज देता है, शर्त यह कि आप सच्चे भी हों और हक पे हों। बस मूसा अलैहिस्सलाम वहां से खौफजदा होकर देखते भालते निकल खड़े हुए। ये जो लफ्ज है ना, ये तरक्कब, अब वक्त तो नहीं है बताने का, मौका तो नहीं, लेकिन यतरक्कब, यतरक्कब पता कैसे चलना होता है? ये देखिएगा, चल रहे ना, फिर साथ ही पीछे देख रहे हैं, फिर थोड़ा जाकर आप पीछे देखते हैं, ऐसा कब करते हैं आप जहाँ खौफ होता है? यतरक्कब, अरबी में दौड़ने के लिए बहुत से लफ्ज हैं, सा भी है सही, यसा, सबका भी है फस्तबिकुल खैरात। यहाँ यतरक्कब ने मूसा के उस इमोशनल लेवल को दिखाया कि अंदर खौफ था, तो पारे में आपको अंबिया कराम का और उनकी माओ का और बाकियों का इमोशनल लेवल दिखा रहे हैं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। दीनदार जो होता है ना, वो बेहिस नहीं हो जाता, ना उसको किसी चीज से खुशी हो ना गम हो, कोई मर गया नहीं कोई बात नहीं, चुप करो रो क्यों रहे हो, तुमने भी तो मरना है, तो फजूल बात है। खुश हो रहे हैं लोग, खा रहे हैं पी रहे हैं, वो कहता है क्या खुशियां मना रहे हो, जहन्नुम नहीं याद तुम्हें, गलत तरीक है ये, आप दीन का गलत कॉन्सेप्ट लोगों को दे के दीन से दूर कर रहे हैं। रोते ही रो, चुप ही रो, खाओ तो छुप के अंदर जाके खाओ ताकि लोग ना देख लें कि दीनदार भी कुछ खा रहा है। गिल्ट दिया हमने दो लोगों को, बहुत गिल्ट दिया हमारी नाकस किस्म की तबलीग ने पिछली सदी में, एक दीनदार को, सच्चा दीनदार, और एक पैसे वाले को, पक्की बात है, दोनों को हमने मुजरिम बना दिया। अल्लाह हमें हिदायत दे दे, पता नहीं कल किस किस का बोझ होगा हमारी गर्दन पे। इज्जत कीजिए दीनदारों की, बहुत नोबल प्रोफेशन है। अंबिया के वारिस होते हैं वो, उनके नाम पे लतीफे और बनाते हैं, शर्म आने की बात है। तो ये जो जुमले हैं ना, कि वो खौफ जदा होकर देखते भालते आ रहे थे और जुबान में क्या था, रब्बी नजीनी मिनल कौमी ज़ालिमीन, आप इस इमोशनल सेटअप को जाने बगैर क्या एंजॉय करें उन नबियों की किस्सों को। इस पार्ट पढ़ने वाली कहानियां है ही नहीं कि आपको मैं सीधा तर्जमा पढ़ा के गुजर जाऊं। फील कीजिए, ऐ परवरदिगार मुझे जालिमों के गिरोह से बचा ले। क्या पता चला कि अम्बिया कराम ने भी अल्लाह से ही मदद मांगी जब जिंदगी में कोई मुश्किल आई तो। चलिए अब इन इब्तदाई 21 आयतों पे तदब्बुर करते हैं, अमल की बातें। अल्लाह से दिल की मजबूती और तंगी और आसानी में साबित कदमी की दुआ करें, हमें इसकी बहुत ज़रूरत है, ख़ास तौर पर अगर अब आप कुरान के कोर्सेज करेंगे ना आगे, अभी से लिख लें, हथेली के छाले मत बने, हर वक्त अपनी लाड ना देखें, अब मुझे जुकाम हो गया, अब नज़ला हो गया, मैं बुरा नहीं कह रही, लेकिन कुछ भी नहीं होगा आप जब इधर आके बैठ जाएंगे। कभी घर में अपना हाल भी ना पूछा करें, थकन है, कोई भी नहीं थकन, मुझे बिल्कुल नहीं थकन, कह के देखें, कुछ भी नहीं होगी, गर्म पानी में शावर ले, सारी उम्र की आपकी थकन दूर हो जाएगी। और आपने हाल पूछेंगे तो आप कहीं कुछ परेशान होंगे, क्योंकि ये हमारा जिसम हमारे ब्रेन के ताबे है, ये बॉल्व है मेन, इसमें जो डाल लेंगे वो, कभी करना है तो करना है, जाना है तो जाना है, पढ़ना है तो पढ़ना है, पढ़ाना है तो पढ़ाना है, जिम्मेदारी पूरी करनी है तो करनी है। और याद रखिए, जब कोई अपनी जिम्मेदारी की जगह छोड़ देता है अपने छोटे मोटे किसी जाती मसले की वजह से, बहुत बड़ी खयानत होती है। मैदान जंग से भागना कबीरा गुना है, तो वो तो मैदान जंग है ना, दुश्मन आया हुआ है, तो ये मैदान अमल है, ये भी तो एक जंग और जिहादी की कैफियत होती है। तो हमेशा अपनी कमिटमेंट्स को फुलफिल कीजिए, हर जिम्मेदार अपने आप से पूछे, क्या मैं अपनी जिम्मेदारियां आसन दर्जे पे पूरी करता हूँ। किसी भी काम का जो जिम्मेदार है, अगर वो उस चीज से इंटरेस्ट लूज कर देना, पूरा प्रोजेक्ट, पूरा कोर्स, पूरी वो चीज धड़म से नीचे गिरती है, डिक्लाइन, डाउनफॉल शुरू हो जाता है उस प्रोजेक्ट का, उस कोर्स का, उस नेकी के काम का जिसमें मेन लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए। अल्लाह हमें जिम्मेदारियों को निभाने वालों में रखे। फिर अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी है, रब्बी नजिनी मिनल कौमि ज़ालिमीन, ऐ परवरदिगार मुझे जालिमों के गिरोह से बचा ले। किसी ऐसे नेक आदमी का दिफा करें जिसके खिलाफ कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हों। अब किसके खिलाफ है, अल्लाह रहम करे, अल्लाह हिदायत दे लोगों को। मैंने तो इमाम काबा के खिलाफ लोगों को वीडियो बनाकर वायर करते देखी है, मेरे तक पहुंच जाती है, मैं खोलती भी नहीं ज्यादा चीजें, ना वक्त होता है ना शौक है, लेकिन सिर्फ आउट ऑफ क्यूरियस, हाय 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 ये क्या हो रहा है, अच्छा मैं तुम्हें भेजूंगी। आप मुजरिम होंगी उस वीडियो बनाने वाले की तरह, जिसने बनाया, जिसने वायरल किया, जिसने बदनाम किया। कई लोग मुल्कों के खिलाफ वायरल बनाते हैं, अब ये हो रहा वो रहा, क्या आपका ये नसीब है, आप गंद उछालेंगे लोगों का। तो कभी भी ऐसी कोई चीज आपके सामने आए तो उस बिला पड़े, और अगर आप उसको जानते हैं तो आप उसके हक में गवाही दीजिए। हजरत आयशा पे तोहमत लगी जब सूरत नूर में हमने पढ़ा, तो अल्लाह ने क्या कहा कि लौला, तुमने क्यों नहीं कह दिया कि ये बात गलत है। तो याद रखिए, गूंगे शैतान नहीं बनना, जहां किसी की इज्जत पे हर्फ आए और आपको पता हो कि ये बात झूठ है, आप चुप करके बैठे रहे, आप भी मुजरिम बन के आएंगे, आप गवाही छुपाने वालों में शामिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद रहनुमाई के पॉइंट्स, जमीन पर गलबे के लिए सब्र, इसकी तैयारी और कोशिश करना जरूरी है। मुसीबतों पर सब्र करना अल्लाह का फजल और एहसान है, लिहाजा अल्लाह से इसका फजल मांगिए। लोगों के लिए अपना तावन पेश करना और इनकी खैरख्वाही करना नेक आमाल है, गौर व फिक्र की बात है। इत्तहाद और इत्तफाक की सफ को तोड़ना दुश्मनों का अहम मकसद होता है, इस मकसद को नाकाम बनाना है। बोलिए इंशाल्लाह, यानी दुश्मन तो चाहते ही है कि मुसलमान फूट जाए, वो तो चाहेंगे कि इस्लाम बदनाम हो जाए, इस्लाम वालों को बदनाम करेंगे तो इस्लाम बदनाम होगा ना। अगर आप कोई असबाब इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका ये नहीं मतलब कि आपका ईमान नहीं है। मुसीबतों में वावेला करना कमजोर ईमान की अलामत है, इससे अल्लाह ताला बचा के रखे। हक का एतराफ करना अंबिया कराम की सिफत है, इसको अपनाना है। कितने आराम से हजरत मूसा मान गए, यस आई हैव डन दिस, हो गया था मुझसे कत्ले खता, हाँ मैं नादान था, अनजाने में हो गया। तो कभी जिंदगी में कभी आपसे कोई गलती हुई हो किसी रिश्ते के मामले में, किसी मामले में, तो कन्फेस कर लीजिए, हाँ मैंने किया था, अच्छा अम्मी सॉरी मुझे उस वक्त नहीं पता था, अच्छा बेटा मुझसे ये कमी होगी आपके हक में। आप जितना जल्दी मान जाएंगे ना अल्लाह आपको उतनी ज्यादा इज्जत देगा। फिर आगे आए 22 से, अब मूसा की जिंदगी का तीसरा दौर। पहला क्या था, वो एक क्रैडल में आजमाए गए, दरिया में डाले गए, वहां से फिरौन के महल में आ गए। दूसरा दौर तो उनकी जवानी का, जिसमें एक शख्स की मदद करते हुए उनके हाथ से कत्ले खता हो गया। अब ये तीसरा, आप इसको लिख सकते हैं ये हिजरत है। और आपको पता है कि इन आयतों का भी तो हम नहीं कर रहे उस तरह, लेकिन नबी सल्लम के सफर पूरे हिजरत और उसमें इसमें भी बहुत प्यारे रिलेशन हैं। आपको ढूंढना चाहें तो बाद में ढूंढ लीजिएगा। वलम्मा तवज्जह तिल्का मदयन, और जब मदीन की तरफ मुतवज्जे हुए तो कहने लगे मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधी राह ले चलेगा। मदीन के पानी पर जब आप पहुंचे तो देखा लोगों की एक जमात वहां पानी पिला रही है और दौड़ते अलग खड़ी अपने जानवरों को रोकती दिखाई दी। पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है, वो बोली कि जब तक ये चरवाहे वापस न लौट जाएं हम पानी नहीं पिलाती, और हमारे वालिद बहुत बड़ी उम्र के बूढ़े हैं। यानी लड़कियां भी नेक थी, मूसा भी नेक थे, फौरन कह दिया कि हम ऐसे नहीं बाहर आए, असल में बाप बूढ़े हैं ना तो मजबूरी में आना पड़ा। और मूसा अलैहिस्सलाम ने उन औरतों से कोई राहो रस्म नहीं बढ़ाई, हाल चाल अहवाल नहीं पूछे, नाम नहीं पूछे, बल्कि कह दिया कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। यानी औरतों का क्या काम बाहर मर्दों में जाके दूसरे मर्दों से इख्तलात हो, तो ये बात काम की बात थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम को फील हुआ कि ये लड़कियां बेचारी अकेली हैं और चरवाहे सारा पानी तो बकरियों को पिला देंगे, कुओं में पानी जितना होता है खत्म हो ना, फिर कुछ घंटे इंतजार करें फिर पानी आता है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, फसका लहुमा, बस आपने खुद इन जानवरों को पानी पिलाया, फिर साय की तरफ हटाए और कहने लगे रब्बी इन्नी लिमा अनजलत इलैय मिन खैरिन फकीर। आप एक मांगे, जब कभी जुबान पे लफ्ज ही ना आ रहे हो, इतनी घबराहट होती है दुआ मांगनी भूल जाती है, या इतनी चीजें खराब है, इतनी चीजों की जरूरत है, समझ आ रही क्या मांगू क्या ना मांगू। यानी जब आपकी जुबान साथ ना दे तो ये दुआ मांगे, क्या ऐ परवरदिगार तू जो कुछ भी भलाई मेरी तरफ उतारे मैं इसका मुख्ताज हूँ, सब कुछ चाहिए। अब देखिए इस दुआ की कबूलियत, दुआ तो अकेले में बैठे लड़कियों से कोई नहीं मांगा कि कुछ पैसे दे जाओ मैंने तुम्हारी खिदमत की है, मैं परदेसी हूँ। और मूसा की कैफियत देखिए, परदेसी मुसाफिर, कत्ल का इल्ज़ाम लगा हुआ है, आज के दौर में आप कह सकते हैं इमिग्रेंट, बगैर वीजे के, पेपर वर्क भी नहीं है पूरा, और गयूर कितने, कुछ नहीं मांगा। लड़कियां घर गई, बाप को बताया, कभी आज तुम जल्दी कैसे आ गई, कब वहां कोई एक अच्छा सा जवान था आज उसने हमारी बकरियों को पानी पिला दिया, हम बिला वजह बाहर नहीं बैठी आ गई, अच्छा जाओ लेके आओ उनको। और बाप बूढ़े भी थे और रिवायात से आता है कि देखने से भी माजूर थे, यानी बाप डिसेबल्ड थे इसलिए बच्चियों को भेजा हुआ था। अब क्या हुआ, फजात हो इहदा हुमा तमशी अल इस्तिहया, इतने में इन दोनों औरतों में से एक इनकी तरफ शर्मो हया से चलती हुई आई, कहने लगी मेरे बाप आपको बुला रहे हैं ताकि आपने हमारे जानवरों को जो पानी पिलाया है इसकी उजरत दें। जब मूसा अलैहिस्सलाम इनके पास पहुंचे और इनसे अपना हाल बयान किया तो वो कहने लगे अब ना डर, तूने जालिम कौम से निजात पाई है। कालत इहदा हुमा, इन दोनों में से एक ने कहा अब्बा जी आप इन्हें मजदूरी पर रख लीजिए, क्योंकि जिन्हें आप उजरत पर रखें इनमें से सबसे बेहतर वो है जो मजबूत और ईमानदार हो। तीन कयस लोगों में एक नाम इस औरत का आता है, शुएब की बेटी अलैहिस्सलाम, क्योंकि इसने बाप को मशवरा दिया था कि आप इस शख्स को जॉब दे दें, मजबूत भी है। इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम आता है, क्योंकि उन्होंने अपने बाद के लिए हजरत उमर को नॉमिनेट किया था। क्या पता चला कि किसी भी अच्छी चीज में अपना हिस्सा डाल सके तो जरूर डाल देना चाहिए। खैर काल इन्नी उरीदू, क्या कहा इस बुजुर्ग ने, कहा मैं अपनी दोनों लड़कियों में से एक को आपके निकाह में देना चाहता हूँ। इस मेहर पर कि आप 8 साल तक मेरा काम करेंगे। हाँ, अगर आप 10 साल पूरा कर दें तो यह आपकी तरफ से बतौर एहसान के हैं। मैं हरगिज नहीं चाहता कि आपको किसी मुशक्कत में डालूं। अल्लाह को मंजूर है तो आगे चलकर आप मुझे भला आदमी पाएंगे। कहा ज़ालिका बैनी व बैनक, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, खैर तो ये बात मेरे और आपके दरमियान पुख्ता हो गई। मैं इन दोनों मुद्दतों में से जिसे पूरा करूं मुझ पर कोई ज्यादती ना हो। हम जो कुछ कह रहे हैं इस पर अल्लाह गवाह और कारसाज है। अब यहाँ मूसा की जिंदगी का ये दौर पूरा हुआ। दुआ मांगी थी, नीली मानजल तलेजा मिन खैरिन फकीर, उसके जवाब में रोटी, कपड़ा और मकान और जॉब सब मिल गया। ये जात आपकी एक दुआ के बदले में आपकी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकती है। उससे मांगिए। अब मूसा की जिंदगी के और 10 साल गुजर गए। आपको लग रहा है ऐसे जैसे जंप करता है ना बंदा, और मूसा ने 10 पूरे किए, 8 नहीं। दामाद ऐसे ही होते हैं। मूसा अलैहि सलाम जो थे वो अपनी कौम की तरफ वापस भेजे जा रहे हैं, नबी बनाए जाएंगे। यहाँ इंशाल्लाह हम जब भी अपने उस आलम की बुक करेंगे तो उसमें देखेंगे नबी सल्लम बाहसियत दामाद। इसमें दामादों के लिए बहुत सबक है। ससुराल वालों को ना कुछ चने नहीं चबवाने, उनको धमकियां नहीं देनी, हम क्या कर सकते। तो आज हमारे कल्चर में दामाद क्या है, शेर। दामाद के आने पे हवाइयां उड़ रही होती हैं घर वालों की। तो ये रिश्ते मोहब्बत के होते हैं, प्यार के होते हैं। इसको बोझ न बनाइए और ना कीजिए। बहरहाल अब मूसा अपनी बीवी को और बच्चों को लेके वापस जा रहे हैं। फलम्मा कदा मूसल अजल, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मुद्दत पूरी कर ली और अपने घर वालों को लेकर चले तो कोहे तूर की तरफ आंख देखी, अपनी बीवी से कहने लगे, ठहरो, कुसू, मैंने आंख देखी है, बहुत मुमकिन है कि मैं वहां से कोई खबर लाऊं या आग का कोई अंगारा लाऊं ताकि तुमसे निकलो। पर जब वहां पहुंचे तो इस बबरकत जमीन के मैदान के दाएं किनारे के दरख्त में से आवाज दिए गए, क्या? इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। कह मूसा, यकीनन मैं ही अल्लाह हूँ, सारे जहानों का परवरदिगार। क्या बीती होगी मूसा के दिल पे। आज कुरान पढ़ते वक्त एक खास सुकून और ट्रैंक्विलिटी फील होती है ना, ये इस कलाम का असर है। और जब साहिबे कलाम खुद कलाम कर ले ब्राहे रास, तो मूसा के दिल पे क्या गुजरी होगी उसको महसूस करें। और साथ ही फिर हुक्म भी दे दिया, वा नल किया साक, और ये भी आवाज आई कि अपनी लाठी डाल दे। फिर जब इसने देखा कि वो सांप की तरह फन फैला रही है तो पीठ फेर कर वापिस हो गए और मुड़कर रुख भी ना किया। हमने कहे, मूसा आगे आ, डर मत, यकीनन तू हर तरह अमन वाला है। बस लुक यदा कई फी जई बिक, अपने हाथ को अपने गिरेबान में डाल, वो बगैर किसी किस्म के रोग के चमकता हुआ निकलेगा। बिल्कुल साफ और खौफ से बचने के लिए अपने बाजू अपनी तरफ मिला ले। ये दोनों मोजज़े तेरे लिए तेरे रब की तरफ से हैं, फिरौन और इसकी जमात की तरह। यकीनन वो सब के सब बेहुक्म और नाफरमान लोग हैं। क्या पता चला? दो मोजज़े दिए गए, यदे पैसा और असा, एक में खौफ है, एक में उम्मीद है। यह है व्हील ऑफ लाइफ। कभी आप खुशखबरियों में होंगे, कभी आप खौफ में होंगे, आजमाइशों में होंगे। मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के ये उतार चढ़ाव आपके सामने थे, और अल्लाह ताला ने आपको आजमाइशों में पूरा उतारा, और उसके साथ ही साथ आपको खुशखबरियां भी दी। आपका मेरा काम क्या है? अगर कभी जिंदगी में कभी किसी आजमाइश में आ गए, आजकल अगर आप आजमाइश में हैं, किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, किसी ने आपको छोड़ दिया, किसी ने आपको परेशान किया, तो जरा सा ऊपर नजरें लगाकर देखिए कि अल्लाह इसके बाद की खैर दिखा। ये कुरान है जो आपको डिप्रेशन से निकालता है, बेमकसदियत से निकालता है, शर्त है कि सर डालकर इस किताब को पढ़ने लग जाए। चलिए आयत नंबर 33 से, काल रब्बी इन्नी कतलतु मिनहुम नफ्सा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार मैंने इनका एक आदमी कत्ल कर दिया था, अब मुझे अंदेशा है कि वो मुझे भी कत्ल कर डालेंगे। और मेरा भाई हारून अलैहिस्सलाम मुझसे बहुत ज्यादा फसीह जुबान वाला है, तो इसे मेरा मददगार बनाकर मेरे साथ भेज कि मुझे सच्चा माने। मुझे तो खौफ है कि वो सब मुझे झुठला देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम तेरे भाई के साथ तेरा बाजू मजबूत कर देंगे और तुम दोनों को गलबा देंगे, फिरौनी तुम तक पहुंच ही ना सकेंगे। बस अब हमारी निशानियों के तुम दोनों और तुम्हारी ताबेदारी करने वाले ही गालिब रहेंगे। कैसे अल्लाह सुबहान तआला खुशखबरियां दे रहे थे नबूवत के आगाज में ही, تدبر کرتے ہیں آیت 22 سے، کمزوروں کے لیے اپنے دستے تعاون کو پھیلا کر اور ان کی مدد کریں، بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا اچھا بدلہ دیں، یہ صالحین کی عادت ہے، اپنے خوف اور اندیشوں کی شکایت صرف اللہ سے کریں۔ قرآن پاک سے رہنمائی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، ربی نیلی ما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ چلیے ذرا سا اپنی کوئی آزمائش، کوئی تکلیف ذہن میں رکھیں، کوئی حاجت، کوئی خواہش، اور بڑے پیار سے عاجزی سے کہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اب میں نے یہ کہا ہے نا، تو میں نے آج کے پورے دن کے سارے کام سوچ لیے ہیں، ہفتے کے پورے جو میرے دماغ میں ڈے ٹو ڈے چیزیں ہوتی ہیں نا، سوچ کے میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان سارے معاملات میں تو خیر دے دے۔ آپ کا اللہ کے ساتھ دعاؤں کا تعلق جڑ جائے نا، تو پھر آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں، تو اپنی اپنی پریشانیاں، اپنے پرابلمس، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ غم ہی ہوں، دکھ ہی ہوں، ہمیں دن میں کئی دفعہ، کتنی دفعہ، کئی چھوٹے چھوٹے ہیکپس آتے ہیں نا ٹریفک میں پھنس کے، ربی نیلی مان زلتا علیہ من خیر فقیر، گھر میں کوئی مسئلہ ایک دم کھڑا ہو گیا، ربی نیلی مان زلتا علیہ من خیر فقیر، کوئی طلب ہے اللہ سے، ربی نیلی مان زلتا علیہ من خیر فقیر۔ ہم جو دعائیں کرتے ہیں نا، وہ آرڈر پلیس کرتے ہیں، وہ جیسے کھانے کے لیے آرڈر نہیں پلیس ہوتا، اچھا ایک یہ لے آئیے، ایک یہ لے آئیے، اچھا سا جوس بھی لے آئیے گا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ دعا تو اللہ کے ساتھ تعلق کا ایک خوبصورت اظہار ہے، اس کے ساتھ لفظ بھی زبان پہ آ جائیں تو اور بات ہے، لیکن دل کے جذبات کے بغیر صرف پہاڑوں کی طرح پہلے چکر کی دعا، دوسرے کی دعا، آپ کی دعاؤں کے جوش میں دوسروں کو اپنی بھول جاتی، میں تو ان کی مانگنی شروع ہو جاتی ہوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے نا، تو طواف میں جب ہوتے مزہ بڑھاتے ہیں، اس سے مجھے سب بندے اچھے لگتے ہیں اصل میں نا، تو وہ پہاڑوں کے تو سارے کرتے ہیں اللہم اللہم، پھر دوسری وہ کوئی دعا کرتے تو میں کہتی ہوں چلے دعا تو یہ اچھی ہے، میں بھی مانگ لیتی ہوں، پھر کیا ہے، وہ تو پیار سے کر رہے ہیں تو کرنے دے، لیکن غلط صحیح کا فرق تو آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ایک اسپرچویلٹی تو آتی ہے لوگوں کی باتیں سن کے، اور طواف میں اکثر ایک دعا ضرور کیا کرے، اللہ اس وقت جتنے بھی تیرے بندے ادھر ہیں، تیرے سے بڑی امیدیں لگائی ہیں تو ان کی پوری کر دے، اپنے سے زیادہ دوسروں کی دعائیں کریں، آپ کے لیے پھر فرشتے کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے، اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرنا قبولیت دعا کے اسباب میں، یہ کیا ہے موسیٰ نے، دیکھیں نا، ریزنٹمنٹ کے ساتھ کوئی آپ سے کچھ مانگے تو آپ دیں گے، کچھ طلب کے ساتھ مانگے گا تو دیں گے نا، نہیں رہنے دو، نہیں مجھے نہیں چاہیے تو آپ کہیں گے نہ سے، اور کوئی آ کے چپک ہی جائے، دے دے ہائے روٹی نہیں، ہائے نہیں، تو اللہ کے آگے ہمیشہ فقیر بن کے جائیں۔ آگے ہم پڑھیں گے سورۃ فاطر میں، یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید، تو اللہ کرے کہ ہم اس کے سامنے منگتے بن جائیں۔ دعوت کے کام میں موقع کے مطابق دلیل اور مناسب مثال پیش کرنے کی کوشش کریں، یہ حضرت موسیٰ سے ہم نے سیکھا۔ پھر غور و فکر کی بات ہے، مرد و زن کے اختلاط کی ممانعت انبیاء کی سنت ہے، اس کی پیروی کریں۔ اب یہاں یہ سوال آج کے بھی دور ہمارے مسائل میں، کہ عمرے پہ جاتے ہیں، مکہ میں جاتے ہیں تو اختلاط ہوتا ہے، مدینہ میں تو اللہ کا شکر الگ الگ ہے، مرد عورتوں کا بہت ہی کم انٹریکشن ہوتا ہے، ڈورز بھی الگ ہیں اور جگہ بھی الگ ہیں، اور وہاں کوئی ایسا اجتماعی کام بھی نہیں ہے، عورتوں کو ریاض الجنہ کی اجازت دیں گے تو مردوں کو نہیں دیتے وہاں، الحمدللہ، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں مکسنگ کافی حد تک کنٹرول ہے، حرم میں آ کر بہت مشکل ہو جاتا ہے، گھر سے دعا کر کے نکلا کریں اور کوشش کریں کہ وہ عبادت کریں جس میں آپ کی روحانیت بھی باقی رہے اور آپ کا پردہ بھی رہے۔ جان بوجھ کے گھسنا، آگے جا رہی عورتوں کی چیخیں نکلتی دیکھی ہیں وہاں پہ جانے کے لیے، حجر اسود کے لیے، بالکل کوشش نہ کریں، فتق اللہ مستطاع، تم اوپر کا کر لیجیے تو آپ سب سے کم اس میں بندے کو دھکے پڑتے ہیں، یا جو اوپر کے دو فلور ہیں اس میں کر لیجیے، روف پہ کر لیجیے، آپ کہتے ہیں لمبا بہت ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر لیں، ایک چکر لگا لیں، بیٹھ جائیں، سکون لے لیں، پھر دوسرا لے لیں، لیکن مردوں عورتوں کا اختلاط تو نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جس کے ہاتھ میں زمام امر ہے اس کی خیر خواہی کریں، یعنی جس کے ہاتھ میں کسی کام کی اتھارٹی ہے پھر اس کی مدد بھی کریں اور اس کی بات کو بھی مانیں، جیسے آج کل حرم ہے وہ کہہ رہے ادھر سے نہیں گزرو، ادھر سے گزرو، تو مان لیجئے، اتنے لاکھوں لوگوں کو وہ آپ کے سامنے مینیج کر رہے ہیں، انہیں کا حوصلہ ہے، وہاں اکثر بحث ہو رہی ہوتی ہے، مجھے جانے دو، کوئی اوپر سے کود رہا ہے، کوئی ان کی رکھی ہوئی رکاوٹوں کو اٹھاتا ہے، ایسا نہ کیجیے، اولو الامر ہیں وہ آپ کے، بلکہ ان کو دعائیں دیجیے جو آپ کے لیے اتنی سہولت کرتے ہیں، یہاں روز کتنے لوگ ختم ہو جائیں اگر یہ مینجمنٹ نہ ہو۔ कोई नीचे गिरे तो ऊपर से उठाने वाला ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने देखा है कि सऊदी हुकूमत ने बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है। दुनिया में अगर किसी बाहर के मुल्क में इतना क्राउड हो, मैं अक्सर अपने हस्बैंड से बात करूँ तो हम हंसते हैं कि अगर बाहर की दुनिया में इतना क्राउड इकट्ठा हो तो पहले तो वो सीज़ कर दें, तौबा तो वो बहुत डरते हैं। आग लग गई तो ये होगा इस रूम में इतने बैठ सकते हैं, उसमें इतने नहीं बैठ सकते, ये डोर खुला रखिए वो रखिए, आग लग जाए तो लिफ्ट ना ले, उनकी काम आते थे क्योंकि आग से सबको डर लगता है। तो अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह की तौफीक दे। हक की तस्दीक में एक दूसरे की मुवाफ़क़त करना हक को ताकतवर बना देता है। सच्चा दाई अपनी कमी को पूरा करने के लिए दूसरे वसाइल भी अपनाता है, यानी कभी कभी सामने वाले को मरूब करने के लिए कुछ ऐसे रिसोर्सेज ज़रूर यूज़ करने चाहिए जिससे उसके दिल में इस्लाम का रोब आए।